तूने आज देखा भाभी बारिश वाले सीन को करते हुए कितनी अनकंफर्टेबल थी? यहाँ कुछ लोगों के सामने जब वो उस नॉर्मल से सीन को नहीं कर सकी तो वहाँ सबके सामने भाभी कैसे करेंगी ये सीन? कुछ सोचा है? अगर वहाँ भाभी से कुछ गलती हो गई तो इसका प्ले पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है और हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो सकती है। जानता हूँ, अभी तो कुछ सोचा नहीं है, पर जल्दी ही उसका भी कुछ सोच लूँगा। अभी बाकी के सीन पर ध्यान देते हैं। काफ़ी वक्त बाद वापस कैमरे के सामने आई है तो थोड़ी नर्वस होगी। शायद धीरे धीरे सब खुद नॉर्मल हो जाए, और अगर ऐसा नहीं होता है तो मैं प्ले के लाइव होने से पहले इस प्रॉब्लम का भी कोई सल्यूशन ढूंढ लूँगा। रेहान ने सर हिला दिया और फिर दोनों बाहर पहुंचे, जहां रश्मि और आरवी पहले ही खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। शान आरवी के सामने आकर खड़ा हो गया, पर वो कुछ कहता उससे पहले ही आरवी ने रेहान को देखकर कहा, रेहान जी, आप मुझे घर छोड़ देंगे? रेहान की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने चौंकते हुए पहले आरवी को देखा, फिर शान को देखा, जिसके चेहरे पर गंभीर भाव थे, और वो आरवी को ही देख रहा था। आरवी ने जब उसको शान को देखते पाया और मायूसी से बोली, अगर आप नहीं ड्रॉप कर सकते तो कोई बात नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। रेहान ने वापस आरवी की तरफ निगाहें घुमाई और हड़बड़ाहट में बोला, नहीं भाभी, इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। उसकी बात पूरी होने से पहले ही शान की सख्त आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। आरवी ने तुरंत ही एतराज़ जताया, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ। जाओगी तो तुम मेरे ही साथ, अब अपनी मर्जी से जाओगी या मुझे ज़बरदस्ती करनी होगी, ये तुम पर डिपेंड करता है। शान के चेहरे पर अब भी गंभीर भाव हैं और आवाज़ में सख्ती मौजूद थी, पर आरवी भी कहाँ कम थी। उसने भी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरते हुए कहा, आपकी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। मैं दादागिरी कर भी नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कि तुम मेरे साथ जाओगी, क्योंकि मुझे वही जाना है अंशु से मिलने। शान ने अब सॉफ्टली अपनी बात कही, पर आरवी अब भी मानने को तैयार नहीं थी, तो आखिर में शान ने उसको अपनी बाहों में उठा लिया और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। आरवी छटपटाती रही, छोड़ने को कहती रही, पर शान के कानों में जू तक नहीं रेंगा। वो मदमस्त हाथी की तरह अपनी ही धुन में चलता रहा। पीछे खड़े रश्मि और रेहान आंखें फाड़े उन्हें देख रहे थे, फिर उन्होंने एक दूसरे को देखा और कंधे उचका दिए। शान आरवी को बाहों में उठाए हुए ही अपनी गाड़ी तक पहुंच गया, फिर उसको नीचे उतारते हुए सख्त लहजे में बोला, कोई चालाकी नहीं, चुपचाप यहाँ खड़ी रहना, अगर ज़रा भी हिली तो यहीं किस कर लूँगा तुम्हें। आरवी की आंखें हैरानी से फैल गईं, वो आंखें फाड़े और मुंह खोले उसको हैरान परेशान सी देखने लगी। शान ने कार अनलॉक की, फिर आरवी को देखा तो उसका रिएक्शन देखकर उसके लबों पर कातिलाना मुस्कान फैल गई। वो आरवी के थोड़ा करीब आया और गहरी निगाहों से उसे देखते हुए लबों पर कातिलाना मुस्कान सजाते हुए बोला, अगर किसकी ख्वाहिश है तो सीधे से बोल दो, अपने एक्सप्रेशन से तो मुझे बहकने पर मजबूर मत करो। आरवी की आंखें और ज़्यादा बड़ी बड़ी हो गईं। शान उसके थोड़ा और करीब आया, पर अब आरवी ने उसको खुद से दूर धक्का दे दिया और तुरंत अंदर बैठकर दरवाज़ा बंद कर लिया। शान उसके एक्सप्रेशन याद करके मन ही मन हंस पड़ा, फिर दूसरे तरफ से घूमकर आकर ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। उसने आरवी की तरफ नज़रें घुमाई तो आरवी ने हड़बड़ाहट में निगाहें बाहर की तरफ मोड़ ली, पर गालों पर छाई सुर्खी उसके मन के अनकहे भावों को बयां कर गई थी। शान ने मुस्कुराकर कार स्टार्ट कर दी। सारे रास्ते उनके बीच शांति पसरी रही। आरवी खामोशी से बाहर देखती रही और ड्राइविंग करते हुए शान बीच बीच में उसको ले रहा था। यूं ही दोनों घर पहुंचे, जहां अंशु उनका बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। शान को देखकर वो बेहद खुश हुई और आकर उससे लिपट गई। कई दिनों बाद मिली थी तो कुछ ज्यादा ही खुश थी। शान ने भी उसको खूब लाड किया, फिर अनुपमा जी के कहने पर डिनर के लिए भी रुक गया और डिनर के बाद वहां से निकल गया। सारे दिन की थकी हारी आरवी को आज जल्दी ही नींद आ गई। वहीं शान आगे की प्लानिंग कर रहा था। अगला दिन भी हुआ और शुरू से प्ले के हिसाब से प्रैक्टिस शुरू हुई। यूं ही दिन गुजरने लगे। प्ले की स्क्रिप्ट के हिसाब से रिहर्सल जोरों शोरों से चल रही थी। आरवी को ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि ये सब नया नहीं था उसके लिए, सब उसने खुद भुगता था। जब जब कोई दर्द वाला सीन आता, आरवी की आंखें नम हो जाती। वहीं जब रोमांटिक सीन आता तो आरवी बीते पलों की खूबसूरत यादों में खो जाती। जिस सीन में शान का दर्द और बेबसी दिखाई जाती, उसे आरवी बड़े ही ध्यान से देखती। शुरू में तो बाकी सबकी ही रिहर्सल हो रही थी। अंत के दिनों में अंशु आई थी और इंटेलिजेंट डाडा की इंटेलिजेंट बेटी ने जल्दी ही सब सीख लिया था। आरवी और शान की नोक झोंक वाली लड़ाइयां यूं ही जारी थी, जिसमें अक्सर रश्मि और रेहान ही फंसते थे। रश्मि और रेहान का सारा दिन यहां बीतता और रात का वक्त वो एक दूसरे के साथ बिताते। सृष्टि और अर्जुन का रिश्ता भी नॉर्मल चल रहा था और इस प्ले के साथ साथ अब दोनों को इंतजार था नए मेहमान का, जिसके आने की खबर अब कभी भी आ सकती थी। वृंदा जी और अभिजीत जी वापस जा चुके थे और जल्दी ही वो हमेशा के लिए यहां शिफ्ट होने वाले थे। प्ले की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी। लोगों में क्रेज एक्सट्रीम लेवल पर था। सबको बड़ी ही बेसब्री से इस प्ले का इंतजार था, जिसकी पहली वजह शान की एक्टिंग थी और दूसरी वजह थी कि शान और आरवी की जोड़ी को सब पर्दे पर देखने को एक्साइटेड थे। प्ले की सारी टिकट बिक चुकी थी और ऑडिटोरियम अब हाउसफुल हो चुका था, जबकि अब भी लोग जुगाड़ में लगे थे कि कहीं से टिकट मिल जाए। प्ले के लिए सारे OTT प्लेटफॉर्म के साथ डील हो चुकी थी। रिहर्सल अब पूरी हो चुकी थी। आज लगभग सारे सीन दोबारा किए गए थे, पर बारिश वाला सीन स्किप कर दिया था। कल ही वो दिन था जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था।
अगले दिन प्ले था तो आज सबको जल्दी ही फ्री कर दिया गया था। बस शाम कल की तैयारियों में लगा था। शायद कल का दिन बहुत खास था उसके लिए और वो कहीं कोई कमी नहीं रहने देना चाहता था। कल के प्ले की स्पेशल टिकट मल्होत्रा फैमिली और ठाकुर फैमिली को दी गई थी। बाकी रेहान, रश्मि, सृष्टि तो थे ही। अनुपमा जी भी आने वाली थी और वो भी काफी उत्सुक थी अपने बेटी दामाद को साथ में स्टेज पर देखने के लिए। आरवी भी अंशु के साथ आज जल्दी घर आ गई थी और तब से 2-3 बार स्क्रिप्ट पढ़कर उसको दोहरा चुकी थी, क्योंकि वो भी कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी और गलती की तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी, क्योंकि उसकी गलती का खामियाजा शान को भुगतना पड़ सकता था, जो वो किसी कीमत पर होने नहीं देना चाहती थी। कल के लिए वो भी पूरी तरह से तैयार थी। थोड़ी नर्वस थी पर उससे ज्यादा मायूस और दुखी थी, जिसकी वजह प्ले का अंत था जो उसे जरा भी पसंद नहीं आया था। पर वो शान से कुछ कह भी नहीं सकी थी, या शायद कुछ कहना ही नहीं चाहती थी। रात का वक्त था, घड़ी रात के 10 बजा रही थी। अंशु सो चुकी थी पर आरवी की आंखों में नींद नहीं थी। उसके दिलो दिमाग में अब भी प्ले का एंड घूम रहा था। अचानक ही उसको बालकनी में कुछ टूटने की आवाज आई और वो एकदम से हड़बड़ाकर अपने ख्यालों से बाहर आई, साथ ही थोड़ी चौकन्ना भी हो गई। बालकनी का दरवाजा खुला था पर बाहर अंधेरा था। आरवी ने हिम्मत की और बेड से नीचे उतरते हुए पास रखा वास हाथ में उठा लिया और अलर्ट होकर धीमे सधे कदमों से बालकनी की तरफ बढ़ गई। वो गेट पर पहुंची ही थी कि अचानक ही उसके सामने कोई शख्स आ गया, जिसका आधा चेहरा हुडी की कैप से ढका था।
आरवी ने तुरंत वास वाला हाथ उसके ऊपर चला दिया, पर बीच में ही उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया। आरवी ने चिल्लाने के लिए मुंह खोला, पर अगले ही पल उस शख्स की हथेली ने उसके मुंह को कस के दबाते हुए उसको बालकनी के दरवाजे से टिका दिया। आरवी उससे छूटने को छटपटाने लगी और साथ ही चीखने की नाकाम सी कोशिश करने लगी, पर ना तो आवाज बाहर निकली और ना ही वो उसकी मजबूत पकड़ से खुद को आजाद करवा पाई। लगातार होती उसकी कोशिशों के वजह से आखिर में उस शख्स ने खींचते हुए कहा, हमेशा झांसी की रानी बनना जरूरी है क्या? कितना हिल रही हो, शांति से खड़ी नहीं हो सकती? और चीख किस खुशी में रही हो तुम? कोई चोर उचक्का नहीं हूं मैं और ना ही किडनैपर हूं जो तुम खतरा भांप कर अपना गला फाड़े जा रही हो। तुम्हारा इकलौता पति हूं जिसे तुम स्वर्गवासी बनाने पर तुली हो। उस शख्स की आवाज और बातें सुनकर आरवी की आंखें फटी की फटी रह गई। शरीर जम सा गया और आवाज गले में अटक कर रह गई। उसको स्थिर और शांत देखकर उस शख्स ने, जो कोई और नहीं बल्कि शान था, उसने अब थोड़ा आराम से कहा, छोड़ रहा हूं पर फिर से गला मत फाड़ने लगना और मारने की तो सोचना भी मत। शान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा और उसके मुंह पर से अपनी हथेली हटा दी, पर उसके हाथ को छोड़ने से पहले उसने उसके हाथ से वास ले ली और उसको रखने को झुका कि आरवी ने तुरंत उसके हुडी की कैप हटा दी। शान जैसे ही वापस सीधा हुआ, आरवी ने आंखें फाड़े उसको देखते हुए हैरानी से तेज आवाज में कहा, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं और ये चोरों की तरह इतनी रात गए क्यों आए हैं आप? शान ने बेबसी से अपना सर हिला दिया, फिर आरवी को घूरते हुए दांत पीसते हुए बोला, इतनी धीरे क्यों बोली और तेज चिल्लाओ? कहो तो मैं माइक ला देता हूँ, उस पर अनाउंसमेंट करके पूरे मोहल्ले को बता दो कि मैं इतनी रात गए अपनी ही बीवी के कमरे में चोरों की तरह आया हूँ। आरवी उसकी बात सुनकर पहले तो आंखें फाड़े अचंभित सी उसको देखने लगी, पर जैसे ही उसको शान की बातों में छुपा तंज समझ आया, वो एकदम से झेंप गई और नजरें चुराते हुए बोली, सॉरी, इट्स ओके, बस अब दोबारा चिल्लाना मत शुरू कर देना। शान ने बुरा सा मुंह बनाया। आरवी ने सर हिला दिया, फिर उसको देखकर अब धीमी आवाज में बोली, आप ऐसे इस वक्त यहाँ क्यों आए? शान ने उसका सवाल सुनकर जवाब देने की जगह एकाएक उसको खींचकर अपने सीने से लगा लिया, जिससे आरवी एक बार फिर चौंक गई। शान ने उसको कस के अपनी बाहों में भर लिया और आरवी हक्की बक्की स्तब्ध सी उसकी बाहों के घेरे में कैद खड़ी रही। टू बी कंटिन्यूड।